बन से लड़ाई बनवार की नींद बन से लड़ाई बनवार की ये कहानी है दिए की और तूफान की ये कहानी है दिए की और तूफान की एक रात अंधियारी सी दिशाएं खारी खारी मंद मंद पवन था चल रहा अंधियारे को मिटाने जग में जोत जगाने एक छोटा सा दिया था कहीं चल रहा अपनी धुन में मगन उसके तन में अगन उसकी लौ में लगन भगवान की ये कहानी है दिए की और तूफान की कहीं दूर था तूफान कहीं दूर था तूफान दिए थे था बलवान सारे जग को मतल में मचल रहा ताल हो या पहाड़ देऊं पल में उखाड़ सोच सोच के जमी पे था उछल रहा देख नन्हा सा दिया उसने हमला किया देख नन्हा सा दिया उसने हमला किया अब देखो लीला विधि के विधान की ये कहानी है दिए की और तूफान की ने साथ छोड़ा ममता ने मुख मोड़ा अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा पर हिम्मत न हार मन में मर ना विचार अत्याचार की हवा से लड़ने लगा सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की ये कहानी है जीने की और तूफान की फिर ऐसी घड़ी आई फिर ऐसी घड़ी आई घन घोर घटा छाई अब दिए का भी दिल लगा कांपने बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान उस छोटे से दिए का बल मापने तब दिया दुखियारा वो बेचारा बेसहारा चला जाओ पे लगाने बाजी प्राण की बाजी प्राण की बाजी प्राण की बाजी प्राण की चला जाओ पे लगाने बाजी प्राण की ये कहानी है दिए की और तूफान की लड़ते लड़ते वो थका फिर भी कुछ न थका उसकी चोट में था बल रे सच्चाई का चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर, उसने भीड़ा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश, चले जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक पग झटक झटक, ना हटा पाया दिए को अपनी आन से। बार 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 कर अंत में हार कर, तूफान भगा दे मैदान से। अत्याचार से उभर जली जोश अमर, रही अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की।
ओम शांति। आज विशेष हम सभी की रिक्वेस्ट सचिन भाई ने स्वीकार की और हम सभी के बीच में विशेष क्लास कराएंगे। एक कहानी है दिए और तूफान की। गीत भी बहुत अच्छा बजाया शंभू भाई ने, और आप सभी आज की क्लास में स्वागत करेंगे सचिन भाई का।
ओम शांति। एक बहुत खतरनाक कार्य के लिए एक सम्राट को एक बहुत ही शक्तिशाली बलशाली व्यक्ति की आवश्यकता थी, तो उसने राज्य में घोषणा कर दी, ऐसे चार लोग चुने गए। उस सम्राट के पास एक जादूगर था और सम्राट ने उस जादूगर से कहा कि इन चारों में से सबसे अधिक शक्तिशाली, जोखिम लेने वाला कौन सा व्यक्ति है वो तुम चुनो। तो सम्राट, वो जादूगर और वो चार व्यक्ति एक स्थान पर पहुंचे, एक खेत पे, और एक शर्त वहां पर हुई। दूर नजर आ रहा था एक खलियान। खलियान पता है ना, बाड़ा क्या कहते हैं उसे, बार्न। तो दूर खलियान था। शर्त यह थी कि एक एक को वहां जाना है, एक एक करके जाएगा और उसके अंदर जो वस्तु रखी है वो लेकर आएगा। जादूगर की यह सारी योजना थी। पहला व्यक्ति जाने के लिए निकलता है और थोड़ा सा ही कदम चलता है, उसके बाद मौसम बदल जाता है, हल्का सा तूफान आता है, वो व्यक्ति घबराता है, फिर भी चलता है, परंतु तूफान और तेज होता है, बादलों से बिजलियों की आवाज आने लगती है। वो व्यक्ति चलते चलते घबराता है और गिरता है और नीचे गिर जाता है। अब दूसरा व्यक्ति निकलता है, वो भी चलने लगता है, तो फिर से उससे भी भयंकर तूफान आता है, वो भी घबराता है परंतु चलते जाता है। देखता है उसका पहला साथी नीचे गिरा हुआ है, परंतु वो थोड़ा और आगे बढ़ता है। तूफान और तेज होता है। तूफान के साथ साथ अभी धरती भी हिलने लगती है और एक समय आता है कि यह दूसरा व्यक्ति वो भी घबराकर नीचे गिर जाता है। तीसरा व्यक्ति निकलता है, वो जैसे ही जाने लगता है और तूफान आता है और धरती कपने लगती है और जोर से कपने लगती है, बिजली कड़कने लगती है, बादल गिर जाते हैं। परंतु यह व्यक्ति पहले को क्रॉस करता है, पहला जो व्यक्ति गिरा है उसको, दूसरा व्यक्ति जो गिरा है वहां तक भी पहुंचता है, उसके भी आगे पहुंचता है। बस अभी खलियान सामने ही है पर उसके पहुंचने तक एक जबरदस्त भूचाल भूकंप आता है और वो व्यक्ति नीचे गिर जाता है। चौथा निकलता है, फिर से तूफान आता है, परंतु चौथा व्यक्ति बहुत संभाल संभाल के धीरे धीरे जाता है। उसके सामने आता है वो पहला गिरा हुआ व्यक्ति, तब वो कहता है उसको देखकर, अब तक सब ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ता है, खुद को कहता है कि अब तक सब ठीक है, इसके लिए आगे बढ़ो। और आगे बढ़ता है, तूफान तेज होता है, धरती कपने लगती है, सामने दूसरा व्यक्ति आता है जो गिरा हुआ है, उसको देखकर फिर वो कहता है अब तक भी सब ठीक है और आगे बढ़ता है। तीसरा व्यक्ति गिरा हुआ नीचे आता है, उसको देखकर भी फिर कहता है कि अब तक सब ठीक है और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है। और तेज तूफान होता है, पूरा खलियान जो होता है सामने वो भी हिलने लगता है, परंतु वो व्यक्ति अंदर पहुंच जाता है। पहुंचकर जैसे ही अंदर जाता है मौसम स्थिर हो जाता है, सामान्य हो जाता है। वहां एक घोड़ा होता है और उस श्वेत वस्त्र होते हैं, वो वस्त्र पहनता है, घोड़े पर बैठता है और वापस आता है। मौसम एकदम शांत, जादूगर ने अपनी जादू से सब कुछ किया था। राजा पूछते हैं अब कैसे हो, वो कहता है, क्या कहता होगा, अब तक सब ठीक है। कौन सा मंत्र था उसका, अब तक सब ठीक है, परिस्थिति आ रही है परंतु अब तक सब ठीक है, इसलिए आगे बढ़ो। अब तक सब ठीक है इसलिए आगे बढ़ो। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी किसकी है, वो दिया कौन है, आत्मारूपी दिया है और तूफान कौन है। बहन जी ने हमसे कहा था कि पवित्रता पर क्लास करानी है, तो आज हम इसी विषय को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। एक रात अंधियारी थी, दिशा एक कारीकारी। रात कैसी है, अंधियारी है, क्यों, क्योंकि कलयुग का अंत है, क्योंकि आसुरी स्थापना है। आज सुबह की साकार मुरली, यह है आसुरी स्थापना, यह है ब्रह्मा की रात। रात अंधियारी है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, दिशाएं कारी कारी है, चारों ओर विकारों का साम्राज्य है, तमो प्रधानता है, विषय वासनाएं हैं, और वासना का साम्राज्य बहुत बड़ा है। विलासिता का जीवन बहुत विस्तीर्ण है। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा, और उस बीच में एक था कोई अंधियारे को मिटाने और जग में ज्योत जगाने। किसका संकल्प है ये, इस संसार के अंधियारे को मिटाने का, जग में ज्योत को जगाने का। एक छोटा सा दिया, दिया किसका है, छोटा है, नन्ना है, और रात काली है, दिशाएं कारीकारी है। एक छोटा सा दिया था, कहीं जल रहा, उसकी अवस्था कैसी है? अपनी धुन में मगन है। बाप दादा क्या देखते हैं कल की मुरली में, वर्तमान में लगन की मगन, आत्माओं की क्या देखते हैं? लगन में मगन की अवस्था। एक छोटा सा दिया कहीं जल रहा, अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, शरीर में आग है, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए थे दिए से था बलवान, सारे जग को मसलने मचल रहा। तूफान कैसा है? शक्तिशाली है। कहां पर है? थोड़ा दूर है, परंतु इरादे कैसे है उसके? जग को मसलने के लिए मचल रहा है। झाड़ हो या पहाड़, देवो पल में उखाड़, कितना भी महारथी कोई हो क्या करता है? पल में उखाड़ देता है। सोच सोच के जमीन पे था उछल रहा, एक नन्ना सा दिया उसने हमला किया, अब देखो लीला विधि के विधान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा, पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। काम सबसे बड़ा अत्याचार है, भ्रष्टाचार है। लड़ाई किसके साथ है? दिए की, इस अत्याचार के साथ। सर उठाना या झुकाना, या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की, अग्नि परीक्षा है उसकी भी, दिए की, लिटमस टेस्ट, एसिड टेस्ट। संसार ने हाथ छोड़ दिया है, ममता ने मुख मोड़ा है, दिए पर यह दुख आया, हिम्मत फिर भी नहीं हारा है, परंतु मन में विचार आ रहा है क्या किया जाए। चालू रखे ब्राह्मण जीवन या वापस जाए संसार में? सर उठाना या झुकाना, या भलाई में मर जाना, क्या किया जाए? फिर ऐसी घड़ी आई, फिर उससे भी अधिक परीक्षा आई, घनघोर घटा चाहिए। अब दिए का भी दिल लगा कांपने, दिए भी कपने लगा है, क्योंकि तूफान बहुत तेज है। बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने, तब दिया दुखी आ रहा। रामायण में दिखाया है, लक्ष्मण की पहले हार हुई है मेघनाथ से। मेघनाथ काम का प्रतीक है। बाद में क्योंकि लक्ष्मण के पास पहले अहंकार था, बाद में जब होश में आया तब दूसरी बार उसको हराया। उस छोटे से दिए का मल माप, अब दिया दुखी आ रहा, वह बिचारा बेसहारा, चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की। दिए को पता है कि तूफान बहुत बड़ा है, परंतु उसने भी क्या कर दिया, दांव पे लगा दी अपने जीवन की बाजी को। लड़ते लड़ते वो थका, परंतु वह बुझ ना सका, उसकी ज्योत में था बलरे सच्चाई का, सत्य पर विश्वास था उसका, भगवान के वाक्यों पर विश्वास था। चाहे था वो कमजोर था दिखने में, परंतु पर टूटी नहीं दोर, उसने बीड़ा था उठाया रे भलाई का, विश्व कल्याण का, जगत के कल्याण का, इतना श्रेष्ठ उसका संकल्प है। हुआ नहीं वो निराश, चली जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की, भगवान का वरदान की आस थी नहीं, आस तो पूरी हो चुकी है। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक, पग झटक झटक, तूफान क्या कर रहा है? अहंकार से भरा है, इसलिए क्या कर रहा है? सर पटक पटक और पग झटक झटक, ना हटा पाया दिए को अपने आन से, बार बार वार कर। एक बार नहीं, माया से लड़ाई कब तक है? अंत तक। बार बार वार कर, अंत में हार कर, अंत में परंतु जीता कौन? तूफान भागा रे मैदान से, मैदान से कौन भागा? तूफान। अत्याचार से उभर, जली ज्योत अमर, रही अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल से लड़ाई, बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। तो इस ब्राह्मण जीवन में आत्मा रूपी दिए को एक तूफान का सामना करना पड़ता है, और वो तूफान है सबसे बड़ा तूफान, अपवित्रता का तूफान। जब तक इस तूफान को हम जीत ना ले, जब तक भाग न जाए मैदान से ये तूफान, तब तक आत्मा रुक नहीं सकती, शांत नहीं बैठ सकती। तब तक ये लड़ाई, तब तक ये कहानी जारी रहेगी। तो आज हम कुछ उन तूफानों की चर्चा करेंगे। वो सारे ही तूफान अपवित्रता के तूफान है। ऐसे 21 अपवित्रता के तूफान। कितने? 21 तूफान। एक एक तूफान है, और उस एक एक तूफान से हमें लड़ना है। परंतु ये लड़ाई भी हमारी, बाबा कहते हैं लड़ाई नहीं मोहब्बत। ऊपर उड़ जाओ तो लड़ने की भी आवश्यकता नहीं। संपूर्ण पवित्रता बहुत बड़ा विषय है, उसमें बहुत सारी बातें आती है। एक मुख्य बात, आधार स्तंभ जो उसका है, वो है ब्रह्मचर्य। परंतु ब्रह्मचर्य की हम आज चर्चा नहीं करेंगे, साथ साथ चर्चा होती रहेगी, परंतु मुख्य रूप से उन तूफानों की चर्चा करेंगे जो कि एक दिए के जीवन में आते हैं। जिसने बीड़ा था उठाया रे भलाई का, जिसे आस थी प्रभु के वरदान की, जिसके तन में अगन, जिसके लव में लगन, ऐसा वो दिया हम हैं, और जीत हमारी है। परंतु तूफान तो आएंगे, तूफान को आना है, और सबसे अधिक तूफान अपवित्रता के आएंगे। जैसे कहानी में सुनाया, वह व्यक्ति निकल पड़ा, पहली मंजिल पार की, तो क्या कहा उसने? अब तक सब ठीक है, मतलब अभी मैं और आगे जा सकता हूं, हिम्मत नहीं आ रहा। लड़ते लड़ते वो थका, परंतु हिम्मत नहीं आ रही उस दिए ने, आगे बढ़ता गया। अब तक सब ठीक है, अब तक सब ठीक है, ये वाक्य प्रेरणादायी है। जीवन में अब तक की यात्रा पार की है, अब तक बहुत सारे तूफान आने वाले हैं, परंतु वो भी जब आएंगे तो अब तक सब ठीक है, और कहते कहते पार हो ही जाएंगे, मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। सबसे पहला तूफान, अपवित्र संकल्पों का तूफान। सबसे पहला तूफान अपवित्र विचारों का, अपवित्र संकल्पों का तूफान। हम तो नहीं चाहते कि अपवित्र संकल्प आए, हम तो चाहते श्रेष्ठ संकल्प आए, पवित्र संकल्प आए, परंतु न मालूम कहां से आ जाते हैं और ऐसे आते हैं तूफान की तरह, पग झटक झटक, सर पटक पटक, सर ऐसा वो तूफान आता है पग झटक झटक कर, सारी दुनिया को मसलने का के लिए मचल रहा है वो। क्या स्रोत है, कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, यदि आ रहे हैं तो जरूर जरूर कुछ ना कुछ तो उगम स्थान होगा, किस गंगोत्री से अपवित्र संकल्पों की यह गंगाएं बह रही है। कुछ तो देखा होगा, कुछ तो सुना होगा, कुछ तो कल्पना की होगी, कुछ तो सूंघा होगा। साइंस कहता है विकार के लिए 4 ट्रिगर चाहिए, मेडिकल फील्ड की किताबें कहती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, एक तरफ है शरीर, एक तरफ है मेरुदंड और मस्तिष्क, इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलेट करने के लिए ये 4 चीजें, तभी शरीर में विकारों की उत्तेजना उत्पन्न होती है और उत्तेजित शरीर काम के लिए आतुर होता है। यदि शरीर उत्तेजित ना हो, यदि शरीर शांत हो तो काम आ ही नहीं सकता। उत्तेजित देह की अभिव्यक्ति काम है, पहला विजुअल आंखें, दूसरा ऑल्फैक्ट्री ऑल्फैक्ट्री सूंघना, तीसरा ऑडिटरी सुनना, चौथा टैक्टाइल टच। और भी एक है इमेजिनेशन कल्पना, स्टिमुलस, 5 या कितने हुए, 5। ये स्टिमुलस आएंगे और देह को, देह में न्यूरल सिस्टम, मस्तिष्क और मेरुदंड इसको उत्तेजित करेंगे और वो उत्तेजित होने के बाद शरीर में हार्मोन्स उत्तेजित होंगे और देह के हार्मोन्स उत्तेजित होने के बाद कर्मेंद्रिया उत्तेजित होगी। उत्तेजित कर्मेंद्रियों की अभिव्यक्ति काम है। और इन सब का उगम स्थान है संकल्प। तो पवित्रता के इस मार्ग में, पवित्रता की इस राह में, पवित्रता की इस लड़ाई में पहला जो तूफान है वो कौन सा है, अपवित्र संकल्प। यदि उसे आने ही ना दिया जाए तो आगे का जो क्रम है वो होगा ही नहीं। और देह निरंतर ब्रह्मचर्य में स्थित रहेगा, देह निरंतर पवित्रता में स्थित रहेगा। अगर आ रहा है तो जरूर उसे कोई ना कोई संकल्प कहीं से तो आ रहा है, कोई तो झरोका है, कोई तो खिड़की है जहां से प्रवेश कर रहा है। इस खिड़की को ही क्या कर दो अब, बंद, और श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करना है। कहां से मिलेंगे वो संकल्प, बिखरे पड़े हैं मुरलियों में, खान है मुरली, श्रेष्ठ संकल्पों की। खान के पास आते हो तो मुट्ठी भर नहीं लिया जाता है, कल की अव्यक्त वाणी। तिब्बत राम रस पी लो, रस को पी लो। तो पहला तूफान है अपवित्र संकल्प। जो संकल्प मन में आ रहे हैं उनकी क्या क्वालिटी है? जो संकल्प मन में आ रहे हैं क्या उसमें देहभान मिला हुआ है? एक तो है काम, दूसरे है निगेटिव, फिर है व्यर्थ, कुछ है साधारण। बाबा ने कहा है 2010 डबल विदेशियों से मुलाकात, संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा में साधारण संकल्प भी अपवित्रता है, वो भगवान की दी हुई परिभाषा है। तो संकल्पों को देखना है जो बह रहे हैं, आ रहे हैं, कैसे हैं। तो पहला संकल्प का तूफान, दूसरा अपवित्र बोल का तूफान, दूसरा अपवित्र बोल। अपवित्र वचन नको माझा मुखे त्याहून मुकाज बरामी। संत लिखते हैं कि मेरे मुख से अपवित्र वचन निकलने से तो अच्छा हो कि मैं मुखी हो जाऊं। पापाची वासना नको दाऊ दौड़ा त्याहून आंधळाज बरामी। बोलती जे अर्णव पीयूषाचे, क्या हम बोल रहे हैं कहीं उसमें विकारों की वायु तो नहीं? क्या वो हंसी मजाक में अपवित्रता के अंश तो नहीं? क्या उस बोल में किसी को गिराने का संकल्प तो नहीं? क्या उस बोल में किसी की स्थिति को डगमग करने की सुप्त कामना तो नहीं? अपवित्र बोल के तूफान, क्योंकि वाणी एक बार चालू हो जाए और उसे जो आदत पड़ जाए वो स्वतः ही चलती है। जिस भी दिशा में उसे ले जाओ वो घसीटते हुए शब्द जाते हैं, और अगर वाणी में आ जाए तो फिर धीरे धीरे कर्मों में भी आएगा। दो व्यक्तियों के बीच विकार का संबंध वाणी से शुरुआत होता है। अपवित्र संकल्प, अपवित्र वाणी की लेन देन, एक मैसेज इधर से और दूसरा मैसेज उधर से। एक खत इधर से और दूसरा खत उधर से। और वाणी में वही आएगा जो संकल्प में है। यदि संकल्प में काम छिपा है तो उसकी अभिव्यक्ति वाणी में कभी ना कभी तो होगी, किसी ना किसी तरह से। अवसर की तलाश है। तो दूसरा है अपवित्र वचन, अपवित्र बोल, इम्प्योर स्पीच का तूफान। तीसरा अपवित्र कर्म का तूफान। पांच प्रकार के कर्म बाबा ने कहे हैं श्रेष्ठ है। ये पांच चीजें वहां नहीं है तो शायद वो कर्म अपवित्र है। आज सुबह की साकार मुरली, मुझे देख दूसरा करेंगे, क्या कर्म मैं कर रहा हूं, स्वयं की चेकिंग करो। पहला, हर कर्म श्रीमत अनुसार यदि है तो वो श्रेष्ठ कर्म। दूसरा, हर कर्म आत्माभिमानी स्थिति में है तो वो श्रेष्ठ कर्म है। तीसरा, हर कर्म बाप की याद में किया जा रहा है तो श्रेष्ठ कर्म है। चौथा, हर कर्म निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है तो श्रेष्ठ कर्म। पांचवा, हर कर्म निमित्त भाव से किया जा रहा है तो श्रेष्ठ कर्म है। और ये पांच यदि नहीं है, निकृष्ट कर्म है। जो बोलने से न बोलने से सुधर जाए वो कौन? आज की मुरली अच्छा से पहले लास्ट लाइन, जो बोलने से सुधरे वो मनुष्य, और जो बोल बोल के न सुधरे वो डैश डैश डैश। कितनी बड़ी डैश। चार प्रकार के घोड़े होते हैं, घोड़े जो होते हैं ना, चार प्रकार के। पहला जो घोड़ा होता है, जब तक चाबुक नहीं लगता तब तक चलता नहीं है, भागता नहीं, दौड़ता नहीं, चाबुक लगना चाहिए उसको। दूसरे, जब तक चाबुक की आवाज, दूसरे थोड़े ज्यादा पावरफुल है, चाबुक की आवाज आ गई तो दौड़ने लगते हैं। चाबुक लगा नहीं है, आवाज से। तीसरे कौन से? चाबुक को देखा और दौड़ने लग गए। और चौथे कौन से घोड़े हैं? चाबुक की खाली परछाई देख ली बस और दौड़ना चालू। हम कौन से हैं? बाबा क्या कर रहा है इतने सालों से? और हम तो दौड़ ही नहीं रहे। अब तक तुमने जो कुछ किया है सब कुछ गिरती कला का है, आज की मुरली में है ना। अब वो उड़ती कला का युग सिखाने आया है और हम भाग ही नहीं रहे। तो तीसरा तूफान है अपवित्र कर्म। अपवित्र कर्म करने की यदि आदत पड़ जाए तो वो फिर वो स्वत ही होंगे। जो व्यक्ति कुकर्म विकर्म करते हुए कारागार में फंसे पड़े हुए हैं, यदि उनसे पूछा जाए क्यों किया, कहते हैं पता नहीं, हम तो नहीं करना चाहते थे। युधिष्ठिर, दुर्योधन तो हमेशा कहता था मुझे पता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूं सब गलत है, परंतु मैं रोक नहीं पाता था स्वयं को, क्योंकि आदत अपवित्र कर्म करने की, विकर्म करने की, पाप कर्म करने की। ये पांच चीजें जो बताई उसके विपरीत जो भी कुछ है सब कुछ पाप कर्म है, और ये पांच पुण्य कर्म है। हम कौन सा कर्म कर रहे हैं देखना है। चौथा, संबंध संपर्क में अपवित्रता का तूफान। जो संबंध बना रखे हैं एक दूसरे से, या भाई भाई वाले हैं या लौकिकता है उसमें भी, जिस संपर्क में जिन आत्माओं के, यदि उनके संपर्क में जाने के बाद हमें अपनी धारणाएं छोड़नी पड़ती है लोकलाज के लिए, तो क्या वो पवित्र संबंध संपर्क है? शायद नहीं, या बिल्कुल भी नहीं। और ये भी तूफान है। उन आत्माओं के संपर्क में हमें आना पड़ेगा, शायद अपवित्र दृष्टि और वृत्ति है, परंतु हम अपनी धारणाओं में मजबूत रहे और कोई ऐसा नया रिलेशन, ऐसा नया संबंध न स्थापन कर दो कि जहां पर पवित्रता को दांव पर रखना पड़े। इसके लिए आत्माओं के संपर्क में आओ, उनकी सेवाएं करो, परंतु डिटैचमेंट क्या होनी चाहिए? डिटैचमेंट, वो उधर हम इधर, काम पूरा हुआ तुम इधर हम इधर, नहीं तो वो अपवित्र संबंध, नहीं तो वो अपवित्र संपर्क काम के गर्त में ले जाएगा आत्मा को, और फिर वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। निकल सकते हैं परंतु समय जाएगा, निकल सकते हैं परंतु ऊर्जा खर्च होगी, निकल सकते हैं परंतु बाकी सारे आगे चले जाएंगे। जो गृहस्थियों की स्थिति, गृहस्थी अर्थात उसका संबंध केवल विवाह से नहीं है, कोई कुमार और कुमारी होकर भी गृहस्थी हो सकते हैं, गृहस्थी होने का संबंध मन से है, मन से किस किस से, किस किस को पकड़ रखा है या विवाह कर रखा है, वो भी गृहस्थ है। तो संबंध संपर्क में यदि अपवित्रता है, अटैचमेंट है, एक दूसरे को मिस करने की प्रवृत्ति है, अच्छा नहीं लगता है वो अगर ना हो तो, सूना सूना लगता है, खाली खाली लगता है, वो हो तो सेवाओं में मजा आता है, अच्छा लगता है, वो बाजू में बैठे तो बाबा के साथ योग एकदम तुरंत लग जाता है। प्रश्न दूसरा है, कहां लग रहा है योग? यदि वो हो तो सेवा में बहुत उमंग, यदि वो मुरली सुनाए तो बाबा के प्यार में भाव विभोर हो जाता है मन, परंतु वो बहन कहीं चली गई, अब अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चे बाप से कहते हैं, बाबा ये बहन बहुत मीठी है, बच्चे बाप से कहते हैं, बाबा ये बहन बहुत मीठी है, बहुत मीठी मुरली सुनाती है। बाप कहते हैं, बच्चे मीठी बहन नहीं मुरली है, पांचवा अपवित्र चलन का तूफान, पांचवा अपवित्र चलन, बिहेवियर, मैनर्स। चलन ही ऐसी है कि देखकर नहीं लगता कि यह व्यक्ति चरित्रवान है, हाव भाव, भाव भंगिमा ऐसी है कि देखते ही लगता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, और जो पवित्र आत्माएं हैं वो तुरंत पहचान सकती है। ये नहीं कहेंगी फिर हमें तो पता नहीं था, जो संपूर्ण ब्रह्मचर्य और संपूर्ण पवित्रता में स्थित है वो आने वाले हरेक व्यक्ति के अपवित्र संकल्प वाइब्रेशंस को तुरंत जान सकती है। यदि नहीं जाना जा रहा है तो शायद पवित्रता शिखर पर नहीं, तो शायद ब्रह्मचर्य कहीं ना कहीं खंडित हो रहा है। थॉट रीड करना, आत्माओं को परख लेना, कौन आ रहा है, किस उद्देश्य से आ रहा है, नजर कैसी है, चलन को पवित्र बनाना, नहीं तो अपवित्र चलन का भी एक भयंकर तूफान है, क्योंकि वो बीमारी की तरह है, फैलता है, संक्रामक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति। एक पवित्र अपवित्र के संग चला जाए तो शायद उसे लगता है कि इस तरह की चलन की मान्यता है यहां पर। छठवा, अपवित्र धन की माया का तूफान। अपवित्र धन, सेवाओं में देना है ये लालच, धन को कमाने की अतिरिक्त चाह को तो नहीं उत्पन्न कर रहा है। किस लिए? सेवाओं के लिए। और फिर उसमें कोई भी मार्ग को अपनाना, जल्दी से जल्दी मिल जाए ऐसे मार्ग को अपनाना, और उसमें फिर बहुत सारी चीजें आ जाती है, शोषण, काला सफेद कैसा है वो भी एक तूफान है, लोभ का तूफान है वो। इच्छा तो श्रेष्ठ ही है कि यज्ञ में देना है, परंतु बाबा ने कहा है गरीबों के पाई पाई से परमात्मा तालाब भरेगा। एक भाई ने बाबा से कहा था, ब्रह्मा बाबा से, बाबा आप मुझे साक्षात्कार करा दो तो सारा धन लगा दूंगा, यज्ञ को आखिरी तक संभालूंगा। विक्री नहीं है यहां पर, ना ही भगवान विक्रेता, और भगवान को ऐसा तुम्हारा धन भी नहीं चाहिए। अपवित्र धन का तूफान। अगला, अपवित्र तन का तूफान, अपवित्र शरीर का तूफान। यह देह किसी के भोग के लिए नहीं है, हमारी देह किसी और के भोग के लिए नहीं है। यह देह बड़े भाग मानुष तन पावा, यह देह श्रेष्ठ तपस्या करने के लिए है, यह देह तपाने के लिए है, यह देह भोग और विलासिता के लिए नहीं है, इंडलजेंस के लिए नहीं है। यदि देह का अगर चिंतन केवल देह का ही हो रहा है, दिन रात देह की बीमारी का ही चिंतन, एक छोटी सी बीमारी क्या हो गई, दिन रात उसी का चिंतन और उसी का वर्णन, उसी की चर्चा, आत्माभिमानी रहो तो ये देह ऐसा महसूस होगा, चार दिन पहले मुरली आई थी, जैसे हवा में उड़ रहे हैं, थकान नहीं होगी, ये भगवान उवाच है। कठोर तप के लिए ये देह प्राप्त है। ध्यान तो इसका रखना है, परंतु ध्यान रखने के नाम पर भोग का ये साधन ना हमारा ना किसी और का न बन जाए। देह एक उसको अर्पण करना है, किसी पुरुष को नहीं। अगला, बुद्धि की अपवित्रता का तूफान। क्या भर रहे हैं इस बुद्धि में, क्या भरा जा रहा है, व्यर्थ संसार की अपवित्रता। यदि किसी पात्र में आकाश से बारिश हो रही है, एक पात्र रखा है फिर भी जल नहीं भर रहा है, उसके पांच कारण हैं। आकाश, जल रखा हुआ है, पात्र कंटेनर, एक बर्तन रखा है, बारिश हो रही है, परंतु वह स्वाति की बूंदे उसमें नहीं भर रही है, उसके पांच कारण है। पहला, उसमें किचड़ा पहले से भरा हुआ है तो वो शुद्ध बूंदे उसमें कैसी पड़ेगी। एक दूसरा, उसमें छेद है। तीसरा, ढका हुआ है। चौथा, उल्टा है। और पांचवा, घर के अंदर रखा हुआ है, वो वर्षा बाहर हो रही है। प्रभु प्रेम की वर्षा, परमात्मा वरदानों की वर्षा हो रही है, हम छिपे बैठे हैं अपने ही विचारों के घर में। बर्तन उल्टा है, अपने ही बहुत सारे विचार, बहुत सारी मतांधता, बहुत सारी रूढ़िवादिताओं में बहुत सारे छेद है। संसार की कामनाएं कैसे भरेगा पात्र। बुद्धि में क्या भरा है, बुद्धि के अपवित्रता के तूफान। अगला, संस्कारों के अपवित्रता का तूफान। क्या वही पुराने संस्कार अब भी चल रहे हैं? क्या जाना नहीं कि यह अपवित्रता है? डायग्नोसिस संस्कारों का होना चाहिए, यह विकार है, यह विकार नहीं है। निदान, रोग का निदान पहले होना चाहिए ना, फिर तो बीमारी का इलाज करेंगे। क्या हमने अपनी बीमारी का निदान किया है? क्या हम कह सकते हैं कि ये जो है ये काम है, ये जो है ये लोभ है, ये जो है जिसे मैं प्रेम कह रहा हूं वो प्रेम नहीं परंतु मोह है। बहुत पावरफुल चिकित्सक बनना पड़ेगा खुद का डायग्नोसिस करने के लिए। दूसरों का डायग्नोसिस हम तुरंत कर सकते हैं, तुम्हारा बहुत मोह है बेटे में, दूर हो जाओ, कितना आसान है। और मेरा, अगला तूफान, वृत्ति के अपवित्रता का तूफान, दृष्टि के अपवित्रता का तूफान, दृष्टिकोण के अपवित्रता का तूफान, आदतों के अपवित्रता का तूफान। ये चार। दृष्टि, कल बाबा ने क्या कहा था, क्या देखो, चमकता हुआ सितारा देखो, ऐसी तुम्हारी स्थिति हो तो विश्व की आत्माओं की नजर तुम्हारी ओर जाएगी। दृष्टि में हम क्या देख रहे हैं, दृष्टि से क्या दिखाई दे रहा है, देह दिखाई दे रही है या आत्मा दिखाई दे रही है। दृष्टि के अपवित्रता का तूफान। भक्तों ने आंखें फोड़ दी थी, कितना प्यार होगा पवित्रता से। मार्ग पता नहीं था पर, परंतु साहस तो था। वृत्ति, संकल्पों से वृत्ति बनती है। संकल्पों की जो तरंगे हैं, मॉडिफिकेशंस, चित्त की जो तरंगे हैं उन्हें वृत्ति कहा जाता है। वृत्ति में कहीं अपवित्रता तो नहीं, दृष्टिकोण में अपवित्रता तो नहीं कि हर चीज को उसी पुराने निगेटिव व्यर्थ दृष्टि से, दृष्टिकोण से देख रहे हैं। और चौथा यहां बताया, आदतें, संस्कार और आदतों में सूक्ष्म अंतर है। कुछ ऐसी आदतें हमने बना रखी है कि वो पवित्रता की कैटेगरी की नहीं है। वो टीवी देखना हो सकता है, वो मोबाइल इंटरनेट कुछ भी हो सकता है, और जिसकी लत लग गई है और जिसकी आदत पड़ गई है और जिसमें आत्मा बंध गई है और उसमें से निकल नहीं रही है, यह भी तूफान है। अगला, भावना के अपवित्रता का तूफान, कल्पना के अपवित्रता का तूफान, स्मृति के अपवित्रता का तूफान और स्वप्न की अपवित्रता का तूफान। ये चार। भावनाओं में अपवित्रता तो नहीं, किसके प्रति, कौन सा भाव है। राखी बांध रहे हाथ को पकड़ने का संकल्प तो नहीं। कैसी भावना है एक दूसरे के प्रति, भाई भाई की है कि बहन भाई की है कि क्या है कि और कुछ ही है। और फिर हमें हम उसको कहते हैं अज्ञात सा संबंध है ये हमारा, अननोन, अननोन अर्थात गड़बड़ है। भाई को भाई ही रहने देना, विशेष भाई नहीं बनाना, और बहन को बहन ही रहने दो, विशेष बहन भी नहीं बनाना। माता की पालना को माता जैसे ही पालना रहने देना, मां मत बना देना। किसी को पिता की ही पालना रहने देना, पिता नहीं बना देना। जहां नया संबंध जुड़ेगा वहां पर अपवित्रता आ सकती है। भावना की अपवित्रता के तूफान, कैसी भावनाएं हैं, भावनाओं पर काम करना है। अगला, कल्पना, इमेजिनेशन, फैंटेसी, फैंसी, क्या कल्पना कर रहे, दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग, बैठ बैठ के क्या सोच रहे, सेंशुअल फैंटेसीज, कामुक कल्पनाएं, कहां से कहां घसीट के ले जाती है आत्मा को। और कल्पनाओं में सुख है, परंतु वास्तविक क्रिया और कल्पना लगभग समान है। जो ब्रह्मचर्य का खंडन क्रिया में है, वही ब्रह्मचर्य का खंडन कल्पना में भी है। स्मृति, स्मृति के अपवित्रता का तूफान, अब कोई अपवित्रता नहीं है, परंतु अतीत की अपवित्रता, अतीत के भोग की स्मृतियां, क्योंकि नई ज्ञान की स्मृतियों को जन्म नहीं दिया है। ज्ञान के नए संस्कार, नई स्मृतियां अगर नहीं है, तो वही स्मृतियां जो भोग के है 10 साल 20 साल या पूर्व जन्मों के, उनमें बल बहुत है। अवचेतन तक उनका प्रभाव है, वहां से उभर कर आ सकते हैं। स्मृतियों के अपवित्रता का तूफान, स्वप्न के अपवित्रता का तूफान, जो दिन भर देख रहे हैं वही स्वप्न में आएगा। कोई कहता है हम तो सब कुछ ठीक कर दे, फिर भी ऐसे स्वप्न क्यों, क्यों ये स्वप्न दोष। क्यों ये जागृत दोष, केवल स्वप्न का ही नहीं, जागृत में भी दोष। कहीं ना कहीं तो श्रीमत की अवहेलना या उल्लंघन तो हो रहा है, कहीं ना कहीं से ट्रिगर फिलिप स्टिमुलस उत्तेजक आ रहा है। अगला, सुनने की अपवित्रता के तूफान, श्रवण, क्या सुना जा रहा है, व्यर्थ, निगेटिव, विकार या श्रेष्ठ, महान, पवित्र, जो जो कानों से जाएगा वैसे ही विचार भावनाएं होगी। क्या सुन रहे हैं। अगला, खाने के अपवित्रता के तूफान, क्या खा रहे हैं, क्रोध में, प्रसन्नता में, कृतज्ञता के साथ कि कंप्लेंट के साथ, शिकायत के साथ, दोष देते हुए क्या करते हुए खा रहे हैं? यह धन्यवाद का भाव है, सम्मान का भाव है, श्रेष्ठ संकल्प है, प्रसन्न चित्त है, मन में धन्यवाद है उसके प्रति, उसने दिया तो। यह भी अपवित्रता है। किस अवस्था में खाया जा रहा है? क्रोध में भरपूर है आत्मा और फिर भोजन कर रही है, कैसी स्थिति है? ईर्ष्या से भरी है, बाजू वाले की थाली में खीर की कटोरी कहां से आई? हमारे थाली में तो हमको है ही नहीं, कहां मिल रही है? द्वापर से आज तक किसका पेट भरा है? भरा है कोई? कह सकता है मैं तृप्त हूं, संतुष्ट हूं, आज मेरा पेट भर गया? पेट का तो स्वभाव ही अतृप्ति, जैसे वासनाओं का स्वभाव है अतृप्ति। कितना भी भोगो, भोगने के बाद वंस मोर की कामना मरते मरते भी रह जाती है। स्पर्श के अपवित्रता का तूफान अगला। टच, किस भावनाओं से स्पर्श हो रहा है? यदि हो जाता है अकस्मात, या योजनाबद्ध, स्पर्श कैसा है? क्या वैसा ही है जैसा एक मां का स्पर्श है उसके शिशु के प्रति? क्या वही पवित्र पवित्र भाव उसमें है? लास्ट, लिखने की अपवित्रता का तूफान। लिखना, टाइप करना, मैसेजेस, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, खत, क्या लिखा जा रहा है और क्या भेजा जा रहा है? यदि उस सेंडिंग, उस सेंट मैसेज में अपवित्रता तो नहीं? ये लड़ाई है दिए की और तूफान की। बार बार वार कर अंत में हार कर तूफान भागा रे मैदान से, सर पटक पटक पग झटक झटक न हटा पाया दिए को अपनी आन से। क्या इस दिए जैसा हम कृत संकल्प और दृढ़ संकल्प है कि जितनी यहां पर बातें गिनाई इन सभी बातों में हमारे जीवन में संपूर्ण पवित्रता आ जाए? संकल्प में पवित्रता, बोल में पवित्रता, कर्म में पवित्रता, संबंध संपर्क में पवित्रता, चलन में पवित्रता, देह में पवित्रता, बुद्धि में पवित्रता, संस्कार में पवित्रता, धन में पवित्रता, दृष्टि में, वृत्ति में, दृष्टिकोण में, आदतों में, भावनाओं में, कल्पना में, स्वप्न में, स्वप्न में, खाने में, स्पर्श करने में, सुनने में और लिखने में, ऐसी 21 पवित्रता है और ऐसे ही 21 तूफान है। एक रात अंधियारी थी दिशाएं कारीकारी, मंद मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने जग में ज्योत जगाने एक छोटा सा दिया कहीं जल रहा, अपनी धुन में मगन, अपने तन में अगन, उसकी तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। तो ऐसी पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है, रोज करनी है। करेंगे? ओम शांति।
लड़ते वो थका, फिर भी बुझ न थका, उसकी चोट में था बल रे सच्चाई का। चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर, उसने भीड़ा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश, चले जब तक सांस, उसे आज थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक, पग झटक झटक, ना हटा पाया दिए को अपनी आन से। बार 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 कर, अंत में हार कर, तूफान भगा दे मैदान से। अत्याचार से उभर, जली चोट अमर, रही अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़।